Hi. In the last podcast, we were discussing at the end about the weaknesses of the Maratha system. And now we'll be telling you what all were the weaknesses of the Maratha system. अगर हम मराठा पावर की बात करते हैं तो मराठा पावर में कुछ तो ऐसी वीकनेसेस थी जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल हुआ और मराठा जो हैं कभी भी एक पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाए जो कि उनको अपना एम्पायर कंसोलिडेट करने में हेल्प करता एंड एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन बना पाते. दे वर नॉट एबल टू डू दैट. इनफैक्ट जो उनकी पॉलिसी थी विच हेल्प देम टू एक्सटेंड देयर पावर ऑल्सो ब्रॉट द अल्टीमेट रुइन. उसने भी सब चीज़ें ख़राब कर दी और जो फिक्स पार्ट ऑफ द लेविज लाइक चौस और स्वदेश मुखी जो मराठा सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाता था सतारा में वो वहाँ पे भेजा जाता था सतारा में और जो रेस्ट टैक्सेस थे वो सरदार्स वगैरह ले लेते थे जो आर्मीज़ को मेंटेन करते थे और जो सरदार थे वर फॉर्मली द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पेशवास बट ईच ऑफ देम हैड बिल्ड हिज डिस्टिंक्ट पावर ओवर सेमी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज. तो सरदार्स वर ऑल्सो बिकमिंग पावरफुल एंड सबकी अपनी अपनी डिज़ायर्स थी कि वो जो है सतारा की गवर्नमेंट को सारा पैसा ना दे के कुछ अपने पास भी रख लें एंड दैट इज़ वॉट दे वर डूइंग. बाय द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 5 डिस्टिंक्ट मराठा पावर्स इस टाइम पे एमर्ज होके आती हैं. ये थी पेशवास जो पूना में रूल कर रहे थे, गायकवाड़ जो बड़ौदा में थे, भोसलेस जो नागपुर में थे, होलकर्स जो इंदौर में थे और सिंधियास जो ग्वालियर में थे. क्योंकि ये जो नेचर है मराठा का पॉलिटिकल सिस्टम का वो एलिनेटेड था द सिंपथीज ऑफ अदर पीपल. मतलब जिनका जो नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम था इसकी वजह से जो मराठास हैं उनको सिंपथीज कभी मिली ही नहीं लोगों से. बाय द रेड्स इनटू टेरिटरीज, स्पेशली ये जो रेड्स करते थे बाकी टेरिटरीज में जो कि बाकी रूलर्स के अंडर आती थी तो उनके नए नए एनिमीज बनते गए. एंड ये जो चार्ज करते थे लेवीज जो इससे कॉमन पीपल वर वेरी मच ऑप्रेस्ड एंड दे डिडंट लाइक द मराठास. स्पेशली हम पीजन क्लास की बात करें और ट्रेडर्स की बात करें उनको मराठास नहीं पसंद थे. और जो थर्ड बैटल थी पानीपत की 1761 में, थर्ड बैटल में ये पता चल गया कि मराठास इंटरनली कितने ज़्यादा वीक हैं और कोई भी उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं था. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हमने देखा कि नादिर शाह जो था वो ट्रूप्स ने उसे पहले ही मर्डर कर दिया था और उसके कन्क्वेस्ट जो अफगानिस्तान में हुए वो बाद में उसके कमांडर्स ने नादिर शाह के इन्वेजन की कमांड अपने हाथ में ले ली. उसके बाद अहमद शाह अब्दाली है जिसने कन्क्वेस्ट किए इंडिया में एंड अहमद शाह अब्दाली ने जो नई डायनेस्टी फाउंड की इट्स नेम वॉज दुरानी डायनेस्टी. एंड मीनवाइल द मराठास हैड बिगिन टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर दिल्ली एंड पंजाब. उन्होंने मराठास अपनी जगह काम कर रहे थे और अहमद शाह अब्दाली अब इंडिया में आके कन्क्वेस्ट करेगा मराठास के ही टाइम पे. इस टाइम पे क्या होता है, एक वॉर होती है बिटवीन मराठास एंड अब्दाली बिकॉज मराठास वर देयर इन दिल्ली एंड पंजाब. एंड बिसाइड्स मराठास कुछ और पावर्स भी थी नॉर्थ में जो कि नवाब ऑफ अवध था, जाट थे, रोहिलास थे और जो मुगल एम्परर था वो इतना मैटर ही नहीं करता था इस वक्त तक. यही एम्परर्स या यही रूलर्स मैटर करते थे. एंड अब्दाली वॉज एबल टू गेन द सपोर्ट ऑफ द अवध. अब्दाली को अवध का सपोर्ट मिल गया और रोहिलास का सपोर्ट मिल गया और मराठास जो हैं वो एकदम से एलिनेट हो गए थे ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरीवेयर. एंड व्हेन द डिसिसिव बैटल टू प्लेस एट पानीपत इन 1761, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है एंड ना ही राजपूत ने, ना ही जाट्स ने और ना ही सिख्स ने कोई भी पावर आके हेल्प नहीं किया था मराठास की. एंड मराठास को उन्होंने खदेड़ के बाहर भिजवा दिया एंड सम ऑफ द बेस्ट कमांडर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड. मराठास बहुत बुरी तरीके से हारे थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में. दिस बैटल इज नोन इन हिस्ट्री एज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड द फर्स्ट एज यू नो ऑलरेडी नो वॉज फॉर बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी. जबकि बाबर की भी हेल्प की थी इंडिया के ही लोगों ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए 1526 में एंड सेकेंड बिटवीन हेमू एंड अकबर की आर्मीज के बीच में 1556 में. और जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वॉर के अहमद शाह अब्दाली के बाद वो वॉर के साथ दैट वाज वेरी डिजास्ट्रस मराठास के लिए स्पेशली. एंड इसकी वजह से एक सीवियर ब्लो पड़ा मराठास को, एक चपेट पड़ी बहुत बुरी वाली. एंड इससे जो मराठास की सुप्रीमेसी इंडिया में वो बनाना चाहते थे वो नदर्न टेरिटरीज की वो तो ख़त्म ही हो गई. वॉट एवर यूनिटी एग्जिस्टेड अमंग देम एंडेड आफ्टर द वॉर. जो भी उनके बीच में आपस में यूनिटी थी वो भी वॉर की वजह से ख़त्म हो जाती है. एंड उनके बीच में जो मराठा सरदार थे वो अब एक दूसरे से ही लड़ने लग गए फॉर पावर, एंड उनके बीच में ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होने लग गए. एंड फॉर अ टाइम मराठा रिकवर्ड सम ऑफ देयर लॉस्ट पावर, बट रिकवरी जो है ये शॉर्ट लिव्ड थी. एंड इन द मीन टाइम बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हो रहे थे पॉलिटिकल लाइफ में कंट्री में, विद द इंटरवेंशन ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंट्री. अब हम बात करते हैं सोसाइटी कैसी थी और पॉलिटिक्स कैसी थी. इस टाइम पे पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे. ट्रेड और कॉमर्स जो है दैट वाज ऑलरेडी फ्लरिशिंग, एंड दिस टाइम आल्सो ट्रेड एंड कॉमर्स वाज फ्लरिशिंग. एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन दिस पीरियड वर मुर्शिदाबाद और ढाका इन बंगाल, और हैदराबाद और मसूलीपट्टनम इन द साउथ, एंड फैजाबाद, बनारस, लखनऊ एंड गोरखपुर इन अवध. जो प्रोविंशियल रूलर्स थे ये हिंदू और मुस्लिम ऑफिशियल्स और रूल चीफ्स का सपोर्ट अपने पास हमेशा ही रखते थे. देर वॉज नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एट दिस टाइम, एंड जो भी रिक्रूटमेंट होती थी ऑफिसेस में वॉज डन विदाउट रिगार्डिंग द रिलीजन एट फर्स्ट. एंड हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो नवाब ऑफ अवध है उसकी आर्मी में देर वर नागा सन्यासीज ऑल्सो. एंड कमिंग क्लोजर ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इस टाइम पर इन्होंने हेल्प किया एक कॉमन कल्चर बिल्ड होने में. एंड इंडियन लैंग्वेजेस सच एज बंगाली, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, ये भी इनमें भी बहुत सारी प्रोग्रेस हुई, एंड देयर लिटरेचर वॉज फर्दर एनरिच्ड. उर्दू विच हैज़ स्टार्टेड डेवलपिंग अर्लियर बिगेन टू बी कॉमनली यूज स्पेशली इन द टाउन्स. यहाँ टाउन्स में उर्दू यूज़ होने लग गई, एंड इट बिगिन टू डेवलप अ रिच लिटरेचर, पर्टिकुलरली पोइट्री की अगर हम बात करें. और बहुत सारी प्रोग्रेस हुई इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक्स लाइक ख्याल, एज वेल एज लाइटर मोड्स ऑफ ठुमरी, गज़ल सिंगिंग, ये सब हमें देखने को मिलता है. पेंटिंग जो है बहुत सारे एरियाज में डेवलप हुई, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल एंड राजपूत स्टाइल्स, पर्टिकुलरली कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, इन स्टाइल्स में पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुई. दिस इन स्पाइट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स, कल्चरल प्रोग्रेस जो है वो कंटिन्यू रही. पॉलिटिकल कंडीशन जो है इंडिया की 18th सेंचुरी में वो एक्सट्रीमली डिसयूनिटी की कंडीशन है. एंड जब मुगल्स का डिक्लाइन होता है, कोई भी ऐसी इंडियन पावर नहीं थी जो उनकी जगह ले सके, स्पेशली स्ट्रेंथ में, प्रेस्टीज में, या फिर वो एक कंट्री इंडिया को यूनाइट कर पाती और एक सेंट्रल अथॉरिटी दे पाती, ऐसी कोई पावर इंडिया में थी ही नहीं. जो मराठास थे जो ऐसी पोजिशन ले सकते थे, जो ऐसा पावर रखते थे कि वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो भी फेल हो गए. और जो उनका मेथड था एक्सपेंशन का, स्पेशली लूटना दूसरी स्टेट को, गुरिल्ला वॉरफेयर करके, एंड ये सब चीज़ों से दे स्टार्टेड एलिनेटिंग देमसेल्फ फ्रॉम अदर रूलर्स एंड पीपल आल्सो. और जो रूलिंग सेक्शंस थे वेरियस स्टेट्स के, वो भी डिवाइड हो चुके थे अपोजिंग ग्रुप्स में, म्यूचुअल राइवलरीज चल रही थी, और इसकी वजह से इंटरनली वो सारी के सारे प्रोविंशियल जो रूलर्स थे ये खुद में ही वीक होते जा रहे थे. और इंडियन सोसाइटी जो है इस टाइम पे इट प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ डिसयूनिटी, और हिंदूज में अपर और लोअर कास्ट और बहुत सारी जातीज बन चुकी थी, एंड कोई एक कॉमन का कॉज था ही नहीं जिसकी वजह से पीपल वुड हैव कम टुगेदर, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर ट्रीटेड बैडली, स्पेशली अपर कास्ट के थ्रू वो उनको अच्छे से ट्रीट ही नहीं करते थे, एंड दे वर कंसीडर्ड अनटचेबल्स. अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, देर वर ऑल्सो डिविजन्स इन अमंग देम. सम ग्रुप्स कंसीडर देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर टू द अदर. कुछ को लगता था भाई हम बहुत सुपीरियर हैं, एंड और भी बहुत सारे रीजंस थे फॉर दिस लैक ऑफ यूनिटी. एंड इकोनॉमिक चेंजेस तो हो ही रहे थे, बिकॉज काफ़ी सारी कंट्रीज हैं यूरोप की, उनमें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज या कंपनीज से लोग इंडिया आ रहे थे, तो कमर्शियली और इकोनॉमिकली इंडिया वाज ग्रोइंग, ट्रेड एंड कॉमर्स वाज ग्रोइंग, इंडस्ट्रीज भी हेल्प कर रही थी इकोनॉमिक लाइफ थोड़ी बेटर करने के लिए. एंड ये जितने भी चेंजेस हैं ये अलग अलग हमारी कंट्री में अलग अलग टाइम पे हुए हैं, और अलग अलग कंडीशंस इनकी वजह से क्रिएट हुई. एंड लोग जिनकी कंट्रीज वर डिवाइडेड इनटू मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दे वर आल्सो स्ट्रगलिंग टू यूनिफाई देयर कंट्रीज, एंड पीपल वर आल्सो फाइटिंग टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. वी हैव सीन इन द वर्ल्ड सो मेनी थिंग्स वर गोइंग ऑन. दे वर ऑन द वे टू एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी विच मीन इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, एंड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वॉज फॉर्म्ड एंड रन अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल. तो हर जगह इस टाइम पर ये हो रहा था कि हर कंट्री में पीपल वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. एंड अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो सिविल वॉर हुआ इंग्लैंड में, किंग वॉज एग्जीक्यूटेड एंड तो मोनार्की वॉज रिजॉर्टेड. बट जो रियल पावर थी अब वो रियल पावर इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट थी. किंग जो है ही बिकेम ग्रेजुअली इम्पॉर्टेंट एंड मियर टिटुलर हेड नहीं रहा. और नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ और फ्रांस में वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो इंडिया में एब्सेंट थे 18th सेंचुरी में. And there was much trade with the outside world and inside the country also, but it did not very much affect the economic and social life of the people. अगर हम बात करें, हर village में lived on the goods जो है वो produce करती थी village itself. तो village वही goods use करता था. And thus it was almost an independent economic unit. बाहर की ज़रूरत ही नहीं थी. और जो revenue जो state उनसे ले लेता था villages से, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता था. मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ द विलेज जो है ह्यूज आर्मीज पे खर्चा जाता था. नोबल्स को एक लग्जूरियस लाइफ देने के लिए खर्च होता था. एंड चेंज ऑफ रूलर्स, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स एंड बहुत सारे जो पॉलिटिकल चेंजेस होते थे ये विलेज की लाइफ को हार्डली इफेक्ट कर पाते थे. विलेजेस में वैसा ही चल रहा था जैसा पहले हो रहा था. And there was no middle class like the one that has emerged in Europe. There were of course families that had become rich through trade, but the wealthy they accumulated was used mainly for money lending rather than on new skills, new ways of producing goods and new technology. और ये भी याद है कि in England in this period जो industrial revolution start हो चुका था वो अब धीरे धीरे बाकी countries में भी spread हो रहा था, especially अगर हम India की बात करें. और ये जो चेंजेस थे पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री में, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद, पीजेंस जो है उनकी मिजरी तो बढ़ती जा रही थी. एंड टू सेफ गार्ड एंड एक्सपैंड देयर पावर जो प्रोविंशियल रूलर्स थे दे स्टार्टेड वेजिंग वॉर अगेंस्ट अदर रूलर्स एज वेल एज अगेंस्ट द लोकल चीफ्स हु रेजिस्टेड देम. और ये जो कॉस्ट होता था वॉरफेयर का वो बेचारे पीजेंस को ही अपने कंधों पर ढोना पड़ता था. दे वर मेड टू पार्ट विद लार्ज शेयर ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस्ड फॉर देमसेल्व्स. And rulers of the states in India seemed unaware of the developments taking place in the world. इनको कोई होश नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर की कंट्रीज में क्या हो रहा है. और पॉलिटिकल लाइफ जो थी इंडिया की, एक न्यू एलिमेंट उसमें आ गया और ये थे द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो हमने देखा कि आना शुरू हो गए थे इंडिया में. एंड अब वो पॉलिटिकल अफेयर्स में भी घुसना शुरू हो गए थे इंडिया के और अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. और जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशंस थी जो इंडिया में ऑलरेडी इतना हर एम्पायर वीक था, उसने उनको बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी टू डू समथिंग, टू इंटरफेयर इन द मैटर्स एंड देन एस्टैब्लिश देयर पॉलिटिकल पावर. लेकिन जो रूलर्स हैं इंडियन स्टेट्स के, उनको कोई पता ही नहीं है. दे वर अनअवेयर कि क्या डेंजर आ रहा है, क्या होने वाला है. इनफैक्ट दे वर क्वाइट विलिंग टू बिकम टूल्स ऑफ द फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज. उनको वो खुशी खुशी ट्रेडिंग राइट्स देने के लिए तैयार थे सो दैट उनके अपने खुद के इंटरेस्ट एडवांस हो सकें एंड ताकि वो बाकी अपने राइवल्स से लड़ सकें. मराठास की डिफीट से पहले थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के ब्रिटिश कॉन्कर्स इंडिया में पहले ही शुरू हो गया था. इन कमिंग डेकेड्स इट कंटिन्यूड ग्रेजुअली टू कवर द ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री. सो इट वॉज अबाउट द वीकनेसेस ऑफ द मराठास एंड दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर एंड इट एंड्स हियर. क्लास 8's फर्स्ट चैप्टर इज हियर एंड इट इज finished. Thank you.